यरमिया अध्याय पांच, यरमिया अध्याय पांच पद एक। यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़कर देखो, उसके चौकों में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, तो मैं उसका पाप क्षमा करूंगा। कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, एक भी ऐसा मनुष्य है? आपको याद होगा कि जब स्वर्ग दूत सदोम और अमोरा का विनाश करने जा रहे थे, इब्राहिम ने उनसे विनती की थी, क्या पृथ्वी का प्रभु निष्पक्ष नहीं है? क्या तुम उन मनुष्यों के साथ धर्मियों का भी नाश कर दोगे? यदि उस नगर में 50 धर्मी मनुष्य हुए तो क्या होगा? प्रभु ने कहा, उन 50 धर्मी मनुष्यों के कारण मैं उनको क्षमा कर दूंगा। प्रभु, यदि 40 हुए तो? यदि 30 हुए तो? यदि 20 हुए तो? यदि 10 हुए तो? प्रभु ने कहा, 10 के कारण भी मैं उन्हें क्षमा कर दूंगा। यहां परमेश्वर यरूशलेम के विषय में कह रहा है, पूरे नगर को खोज कर देखो, यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम कर सके और सच्चाई का खोजी हो। यरमिया अध्याय पांच पद दो। यद्यपि उनके निवासी यहोवा के जीवन की शपथ भी खाए, तो भी निश्चय वे झूठी शपथ खाते हैं। वे उचित शब्दों का प्रयोग तो कर रहे थे, परंतु वो उनके मन से निकलने वाले शब्द नहीं थे। यहोवा के जीवन की शपथ उस समय की प्रचलित उक्ति थी, जैसे आज प्रेज द लॉर्ड। आपको याद होगा जब एलिशा ने आराम के सेनापति नामान को रोग मुक्त किया था और नामान उसे बड़ी भेंट चढ़ाना चाहता था, चांदी और अनेक वस्त्र, क्योंकि वो रोग मुक्त हो गया था। एलिशा ने इसका तिरस्कार कर दिया था, परंतु एलिशा के दास गेहेजी ने उस संपत्ति को देखकर सोचा, वाह, यदि मुझे उसका एक छोटा सा भाग भी मिल जाए तो मैं खेत खरीदकर दाख की बारी लगा दूंगा और मेरे पास दास भी होंगे, मैं जैतून का बगीचा भी लगा लूंगा। अतः वो अपने गधे पर सवार होकर नामान के पीछे गया। नामान के दासों ने कहा, ऐसा लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। अतः वे रुक गए कि देखें वो कौन है। ऐसा लगता है ये तो भविष्यत वक्ता का दास है। जब गेहेजी वहां पहुंचा तब उसने पूछा, सब कुशल मंगल है? ओ हां, सब ठीक है, परंतु मेरे स्वामी एलिशा के कुछ अतिथि आ गए थे और उसे सहायता की आवश्यकता है, इस कारण वो कुछ चांदी और वस्त्रों की याचना करता है। नामान ने उसे वो भेंट दे दी और आगे बढ़ चला। गेहाजी भी लौट आया, उसने वो सामान छिपा कर रख लिया। वो खुशी खुशी एलिशा के घर आया तो तब एलिशा ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ। ये एक आत्मिक शब्दावली थी जिसका अर्थ होता था कि कुछ न कुछ आत्मिक भूल हो रही है। तू कहां गया था? यहोवा के जीवन की शपथ, मैं कहीं नहीं गया था। यहां आप देखते हैं कि आत्मिक शब्दावली के आवरण में झूठ और कपट आत्मिक प्रदर्शन में धोखा देने का प्रयास कैसे छिपा रहता है। मैं चकित हूं कि मनुष्य धोखा देने के लिए किस प्रकार आत्मिक शब्दावली का प्रपंच लेकर आता है। हम भी गेहेजी के अनुरूप आज की आत्मिक शब्दावली का प्रयोग करते हैं, ओ भाई, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर को धन्य कहो। दोस्तों, यहोवा के जीवन की शपथ, मैं कहीं नहीं गया था। भविष्यत वक्ता ने उसके मन को पढ़ना आरंभ किया। ये खेत खरीदने का और दाख की बारी लगाने का तथा जैतून की वाटिका लगाने का समय है। क्या ये समय दासों को काम पर लगाने का समय है? यही तो उसके मन में था। उसने कहा, जब तू उसके पीछे गया और ये वस्तुएं ली, तब क्या तेरा मन तेरे साथ नहीं था? अतः इस कारण उसका कोढ़ तेरे ऊपर आ जाएगा। वो उसी समय हिम का सा सफेद होकर एलिशा के सामने से बाहर चला गया। देखिए, वो आत्मिक शब्दों से खेल रहा था। परमेश्वर ने कहा, यद्यपि उसके निवासी यहोवा के जीवन की शपथ भी खाए, तो भी निश्चय वे झूठी शपथ खाते हैं। यिर्मयाह की प्रतिक्रिया, यिर्मयाह अध्याय 5:3-12 तक। हे यहोवा, क्या तेरी दृष्टि सच्चाई पर नहीं है? तूने उनको दुख दिया, परंतु वे शोकित नहीं हुए। तूने उनको नाश किया, परंतु उन्होंने ताड़ना से भी नहीं माना। उन्होंने अपना मन चट्टान से भी अधिक कठोर किया है। उन्होंने पश्चाताप करने से इनकार किया है। फिर मैंने सोचा, ये लोग तो कंगाल और अबोध ही है, क्योंकि ये यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम नहीं जानते। इसलिए मैं बड़े लोगों के पास जाकर उनको सुनाऊंगा, क्योंकि वे तो यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम जानते हैं, परंतु उन सबों ने मिलकर जुए तो तोड़ दिया है और बंधनों को खोल डाला है। इस कारण वन में से एक सिम आकर उन्हें मार डालेगा। निर्जल देश का एक भेड़िया उनको नाश करेगा और एक चीता उनके नगरों के पास घात लगाए रहेगा, और जो कोई उनमें से निकले वो फाड़ा जाएगा, क्योंकि उनके अपराध बहुत बढ़ गए हैं और वे मुझसे बहुत ही दूर हट गए हैं। मैं क्यों कर तेरा पाप क्षमा करूं? तेरे लड़कों ने मुझको छोड़कर उनकी शपथ खाई है जो परमेश्वर नहीं है। जब मैंने उनका पेट भर दिया, तब उन्होंने व्यभिचार किया और वेश्याओं के घरों में भीड़ की भीड़ जाते थे। वे खिलाए पिलाए बेलगाम घोड़ों के समान हो गए। वे अपने अपने पड़ोसी की स्त्री पर हिन हिनाने लगे। क्या मैं ऐसे कामों का उन्हें दंड ना दूं? यहोवा की ये वाणी है। क्या मैं ऐसी जाति से अपना पलटा ना लूं? शहर पना पर चढ़ के उसका नाश तो करो, तो भी उनका अंत मत कर डालो। उसकी जड़ रहने दो, परंतु उसकी डालियों को तोड़कर फेंक दो, क्योंकि वे यहोवा की नहीं है। यहोवा की ये वाणी है कि इसराइल और यहूदा के घरानों ने मुझसे बड़ा विश्वासघात किया है। उन्होंने यहोवा की बातें झुठलाकर कहा, वे ऐसा नहीं है। विपत्ति हम पर ना पड़ेगी, ना हम तलवार को और महंगी को देखेंगे। ऐसा यहां नहीं होगा। यिर्मयाह अध्याय 5:13-18 तक। भविष्यत वक्ता हवा हो जाएंगे, उनमें ईश्वर का वचन नहीं है। उनके साथ ऐसा ही किया जाएगा। इस कारण सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, ये लोग जो ऐसा कहते हैं, इसलिए देख, मैं अपना वचन तेरे मुंह में आग और इस प्रजा को काट बनाऊंगा, और वो उनको भस्म करेगी। यहोवा की ये वाणी है। हे इसराइल के घराने, देख, मैं तुम्हारे विरुद्ध दूर से ऐसी जाति को चढ़ा लाऊंगा जो सामर्थी और प्राचीन है। उसकी भाषा तुम ना समझोगे और ना ये जानोगे कि वे लोग क्या कह रहे हैं। उनका तर्कश खुली कब्र है और वे सब के सब शूरवीर हैं। तुम्हारे पक्के खेत और भोजन वस्तुएं
जो तुम्हारे बेटे बेटियों के खाने के लिए है उन्हें वे खा जाएंगे, वे तुम्हारी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को खा डालेंगे, वे तुम्हारी दाखों और अंजीरों को खा जाएंगे, और जिन गढ़ वाले नगरों पर तुम भरोसा रखते हो उन्हें वे तलवार के बल से नाश कर देंगे। तो भी यहोवा की ये वाणी है, उन दिनों में भी मैं तुम्हारा अंत न कर डालूंगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि वो अपनी प्रजा को पूरी तरह से नाश नहीं करेगा। यरमिया अध्याय 5 पद 19 से लेकर 25 तक। और जब तुम पूछोगे कि हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमसे ये सब काम किस लिए किए हैं, तब तुम उनसे कहना, जिस प्रकार से तुमने मुझको त्याग कर अपने देश में दूसरे देवताओं की सेवा की है, उसी प्रकार से तुमको पराए देश में परदेशियों की सेवा करनी पड़ेगी। याकूब के घराने में ये प्रचार करो और यहूदा में ये सुनाओ, हे मूर्ख और निर्बुद्धि लोगों, तुम जो आंखें रहते हुए नहीं देखते, जो कान रहते हुए नहीं सुनते, ये सुनो, यहोवा की ये वाणी है, क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? क्या तुम मेरे सन्मुख नहीं थरथराते? मैंने बालू को समुद्र की सिवाना ठहराकर युग युग का ऐसा बांध ठहराया कि वे उसे लांग न सके, और चाहे उसकी लहरें भी उठे तो भी वे प्रबल न हो सके, या जब वे गरजे तो भी उसको ना लांग सके। पर इस प्रजा का हटीला और बलवा करने वाला मन है, इन्होंने बलवा किया और दूर हो गए। वे मन में इतना भी नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर यहोवा को बरसात के आरंभ और अंत दोनों समयों का जल समय पर बरसाता है और कटनी के नियत सप्ताहों को हमारे लिए रखता है, इसलिए हम उसका भय माने। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए, और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। परमेश्वर तो आपके लिए अच्छे अच्छे काम करना चाहता है, परंतु आपके पापों के कारण वो कर नहीं पाता है। यहूदा कहता है, यहूदा पहला अध्याय 21 पद, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। यहां उसके कहने का अर्थ क्या है? उसके कहने का अर्थ यह है कि आप अपने आप को उस स्थिति में रखें जहां परमेश्वर आपके लिए वो सब कुछ करने में सक्षम हो जो वो चाहता है, क्योंकि वो आपसे प्रेम रखता है। उसके कहने का अर्थ ये नहीं है कि अपने आप को ऐसा आकर्षक और मधुर बनाकर रखिए कि आपकी सहायता करने की अपेक्षा बैठकर आपको सराहता रहे। परमेश्वर ना चाहते हुए भी आपसे प्रेम करे। परमेश्वर का प्रेम तो आपके लिए बिना कारण का प्रेम है, ये तो उसका स्वभाव ही है। परमेश्वर आपको प्रेम करता है, चाहे आप अच्छे हो या बुरे, ये तो परमेश्वर का एक गुण है, क्योंकि उसके स्वभाव में आपके लिए प्रेम है। वो आपको आशीषें देना चाहता है, वो आपके लिए उपकार करना चाहता है। परंतु जैसा यहूदा इस्करियोती के साथ हुआ, आपके पापों ने परमेश्वर के उपकारों को आप तक पहुंचाने नहीं दिया, उन सब उपकारों को जो परमेश्वर आपके लिए करना चाहता था। यरमिया अध्याय 5 पद 26 से लेकर 30 तक। मेरी प्रजा में दुष्ट लोग पाए जाते हैं, जैसे चिड़ी मार ताक में रहते हैं वैसे ही वे भी घात लगाए लगाए रहते हैं। वे फंदा लगाकर मनुष्यों को अपने वश में कर लेते हैं, जैसा पिंजड़ा चिड़ियों से भरा हो वैसे ही उनके घर छल से भरे रहते हैं। इसी प्रकार वे बढ़ गए और धनी हो गए, वे मोटे और चिकने हो गए, बुरे कामों में वे सीमा को लांग गए, वे न्याय विशेष करके अनाथों का न्याय नहीं चुकाते, इससे उनका काम सफल नहीं होता, वे कंगालों का हक भी नहीं दिलाते। इसलिए यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं इन बातों को दंड ना दूं? क्या मैं ऐसी जाति से पलटा ना लूं? देश में ऐसा काम होता है जिससे चकित और रोमांचित होना चाहिए। चकित होने का अर्थ है ऐसा काम जो देखे ना गए हो। देश में ऐसा काम होता है जिसे चकित और रोमांचित होना चाहिए। यरमिया अध्याय 5 पद 31। भविष्यत वक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं। मेरी प्रजा को ये भाता भी है, परंतु अंत के समय तुम क्या करोगे? यहां देखिए, भ्रष्टाचार व्याप्त है, शासकों का शासन भ्रष्ट है, परंतु जनता को ये भाता है, उनको आने वाले चुनाव में भी वोट मिलेंगे। मुझे तो चुनावों को देखकर अचंभा होता है। परमेश्वर कहता है, आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। ये बड़ा ही भयानक सा लगता है, ये तो कप कपा देने वाली बात है। याजक अपने धन के जोर पर न्याय के आसन पर बैठे हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि जनता को ये स्वीकार्य है। अचंभित होने की अपेक्षा, क्रोधित होने की अपेक्षा जनता प्रसन्न एवं संतुष्ट है। मेरी तो समझ के बाहर है, परमेश्वर भी तो इस प्रकृति पर विमूढ़ है। ऐसी स्थिति के लिए आप क्या कहेंगे? आप इस पर विश्वास कैसे करेंगे? ये आपकी समझ में कैसे आएगा? भयानक, अति भयानक। यरमिया का अध्ययन करते समय यरमिया के संदेश की कीमत तब समझ में आती है। हम यहां एक ऐसे राष्ट्र को देखते हैं जो नाश होने पर है, और आप उसके लक्षण भी देख रहे हैं। आप उस विकार को भी देखते हैं जिसके कारण इसराइल की प्रजा का अंत होने वाला है। इसका अध्ययन आपको अपनी आज की स्थिति में समझने में सहायक होगा कि आज क्या हो रहा है। प्रभु, हमारी सहायता कर कि हम संसार की राहों पर न चले। परमेश्वर, हम धार्मिकता, सत्य और न्याय पर अटल रहे। हे प्रभु, हमारी सहायता कर कि हम तुझसे दूर न हो या किसी भी प्रकार अपनी मूर्तियों और अपनी शारीरिक लालसाओं की उपासना न करें, परंतु परमेश्वर, हमारे मन में अपना प्रेम ऐसा भर कि दिन प्रतिदिन हम तेरा स्तुति गान करें और हम केवल तेरी स्तुति आराधना करें और तुझ में ही चित लगाए। प्रभु जी, जब हमारा प्रेम तेरे लिए बढ़ता और उन्नत होता जाए तो हम व्यर्थ की भक्ति में ना लगे। प्रभु, हमारी सहायता कर कि हमारा प्रेम ठंडा ना हो, हमें गुनगुन अवस्था से बचा ले, कहीं ऐसा ना हो कि तू हमें उगल दे। यीशु के नाम में आमीन। प्रभु आपको आशीष दे और सुहाना समय प्रदान करे। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर बना रहे और परमेश्वर के लिए आपके मन में प्रेम की अग्नि प्रज्वलित हो। आपकी संगति परमेश्वर के साथ हो, आप परमेश्वर के साथ एक चित हो तथा आप में प्रेम और समर्पण की पुनस्थापना हो। उसके विचारों के लिए ये समय एक महिमा का, आराधना का, उसकी सेवा का और उससे प्रेम प्रदर्शन का कारण हो। परमेश्वर आपके समर्पण और ईश्वर भक्ति से प्रसन्न हो, यीशु के नाम में।